बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। ओम भूर्भुव स्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ अपने बच्चे के निर्माण करने के संबंध में अपने कर्तव्यों को प्राय 5 वर्ष तक पूरा कर देती। पेट में जिस दिन बच्चा आता है उस दिन से माता का कर्तव्य शुरू हो जाता है कि बालक का स्वास्थ्य और बालक का मस्तिष्क विकास करने के लिए उसको अपने चिंतन और अपने आहार विहार में किस तरीके से संयम बरतना चाहिए, और ये प्रक्रिया 5 साल तक जारी रहती है क्योंकि माता से ही बच्चे का सबसे अधिक संपर्क रहता है। माँ के पास वो सोया करता है, खेलता भी माता के पास है, बातचीत भी माता के से ही ज्यादा करता है, गोदी में भी माँ के पास आता है। माता का सबसे प्रभाव बच्चों पर होता है जिनकी उम्र 5 साल तक की है। 5 साल के बाद शिक्षण की जिम्मेदारी दूसरे लोगों के कंधों पर चली जाती है, तो नियम माँ की और अभिभावकों की जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहेगी, उसमें तो कमी क्या हो सकती है, लेकिन मुख्य क्या फिर उसकी जिम्मेदारियाँ अभिभावकों के ऊपर चली जाती है जिसमें पिता मुख्य है। पहले कहा जा चुका है कि शिक्षण स्कूलों में भली से हो लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण घर की पाठशाला में होता है। घर को एक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए अगर हमको भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना है। तब माता को अपना स्वभाव, पिता को अपना स्वभाव, घर वालों को अपना स्वभाव, काम करने का ढंग, घर की व्यवस्था इत्यादि का वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जिसमें कि गीली मिट्टी की तरीके से बने हुए बालक उस ढांचे में ढलते हुए चले जाए। अगर कोई चीज ढालनी होती है तो सारी मशीन इस तरह की बनाई जाती है, उसके पुर्जे ऐसे बनाए जाते हैं जैसे मान लीजिए लोहे की गोलियां ढालनी है तो उसकी सारी मशीन और ढांचे और डाइयां ऐसी बनाई जाएंगी कि जो पिघला हुआ लोहा जहां से जाए इस नाली में मुकर के जाए बस वो गोली बनता हुआ चला जाए, नीचे निकलता हुआ चला जाए। अगर मशीन में नुक्स होगा और मशीन ठीक नहीं होगी तो गोलियां साफ नहीं निकलेंगी और टेढ़ी हो जाएंगी और खराब हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर बच्चों को किस तरीके से बनाया जाना है, उनको सुयोग्य बनाया जाना है या बुरा, उसको सुसंस्कृत बनाया जाना है या कुसंस्कारी, इसके लिए केवल वाणी के द्वारा दिया जाना शिक्षण पर्याप्त नहीं है। वाणी के द्वारा दिए हुए शिक्षण को केवल कान ग्रहण करते हैं और दिमाग स्वभाव में नहीं आता, अंतर चेतना में नहीं आता। अंतर चेतना में वो बातें आती हैं जिनको अक्सर लोग देखा करते हैं और समझते हैं और उसी को लोग सही मानते हैं। कहने के बारे में ये ख्याल है कि बात को बढ़ा चढ़ा करके भी कहा जा सकता है और बात को ऐसे वैसे भी कहा जा सकता है। ऐसे वैसे कहने से क्या काम चलेगा, हमको जो कुछ भी बालकों को बनाना है घर का वातावरण ठीक वैसे बना देना चाहिए। इसके लिए अपने आप को ढलना चाहिए पिता को और अपने आप को ढलना चाहिए माता को, चाचा को, ताऊ को, बहनों को, और वो नहीं ढले हैं तो अभिभावकों का काम है। एक बच्चे के लिए सही या अगले बच्चों के लिए सही घर के वातावरण को व्यवस्थित रखें, दिनचर्या ठीक बनाए, उठने बैठने क्रम ठीक हो, सभ्यता और संस्कृति का क्रम ठीक बने, कोई एक दूसरे के साथ में सभ्यता का व्यवहार करें, ऐसा ना हो कोई किसी के साथ में बुरा व्यवहार करे उसके बच्चों पर छाप पड़े। इसीलिए घर वस्तुतः एक पाठशाला बनाया जाना चाहिए अगर बच्चे पैदा करने हैं और बच्चों को सुरक्षित सुसंस्कृत बनाना है तो, और बच्चों को कूड़े कबाड़े की तरीके से समझना है, चूहे बिल्ली की तरीके से बच्चे पैदा करने हैं और वो कुछ भी बन जाए तो बात अलग है, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चाहे जो घर का आदमी चाहे जैसे रहे और चाहे जो कहे और चाहे जिस तरीके से सोए, चाहे जैसा आचरण करे और फिर चाहे जैसे बच्चे बन भी सकते हैं, भले भी बन सकते हैं, संभावना ज्यादा ऐसी बात की है कि बुरे ही बनेंगे और छोटे आदमी बनेंगे। घर का वातावरण के लिए अभिभावकों की बहुत जिम्मेदारी है। स्कूल में तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं प्राय 45-45 मिनट के 3-4-5 घंटे पढ़ते हैं और 4-5 घंटे रहे और घर आ जाते हैं, बाकी सारे का सारा प्रभाव तो घर के वातावरण का पड़ता है। 20-18 घंटे तो वो घर में ही रहते हैं, असली पाठशाला तो वही है, नकली पाठशाला स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ा करके कोई आदमी लंबे छोड़े ख्वाब देखना चाहता हो तो वो गलत। पहले जमाना अलग था, उस जमाने में अध्यापक जितना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे उससे 100 गुना ध्यान इस बात पर देते थे कि जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं उन पढ़ने वाले बालकों का संस्कार कैसे बने, स्वभाव कैसे बने, कर्म कैसे बने, उसके विचार करने का क्रम क्या है, उसकी काम करने की शैली क्या है, घर में उसका रहन सहन क्या होता है, उसको कैसे सुधारा जाए, पढ़ाई का मूल उद्देश्य ये था और ये मामूली ज्ञान है उनको तो लोग ऐसे ही पढ़ा देते थे, एक दो घंटे रोज पढ़ा दिया काफी है, एक साहब पढ़ा दिया एक घंटे रोज पढ़ा दिया ठीक पचास छह वर्ष में साहब में जानकार हो जाएगा। इतिहास है, दूसरी चीजें हैं, पढ़ना लिखना है, अक्षर ज्ञान है, व्याकरण है, छोटी छोटी बातें हैं, इसका काम भी जीवन में कितना आता है, जरा सा काम आता है, उतनी जानकारियां एक दो घंटे में रोज देते थे, उतनी पढ़ाई चलती थी, बाकी पढ़ाई तो सुबह चला करती थी। अभिभावक इसी तरह का ध्यान देते थे और अभिभावकों के लिए आवश्यक था, लेकिन अब घर के वातावरण बिगड़ते चले जा रहे हैं और पीढ़ियां बिगड़ती चली जाएंगी, इसलिए शिक्षण स्कूली शिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमको घर के वातावरण को, अभिभावकों को, घर के रहन-सहन को सुधारना चाहिए अगर हमको पीढ़ियों को अच्छा बनाना है तब। इसके बाद स्कूल के अध्यापकों का नंबर आता है। अध्यापक माता पिता से श्रेष्ठ माने गए हैं, गुरु गुरु को पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है, माता से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? इसलिए माना गया है कि अभिभावकों को अक्सर उतना समय नहीं मिलता, और समय भी मिलता है तो उनमें योग्यता नहीं होती, योग्यता भी होती है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों से 10-20 मिनट के लिए मिले अपने अंधनों में लग जाते हैं। अध्यापक ही एक ऐसा है सुसंस्कृत व्यक्ति जिसके पास 4-5 घंटे रोज स्कूल में रहना पड़ता है, उसकी छाप आगे भी पड़ी रहती है और कल की बात को पूछ भी सकता है, अगली बात को बता भी सकता है। माँ बाप के बाद में तीसरा नंबर जो पड़ता है अध्यापकों का पड़ता है छोटे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उसके लिए शासक वही है, मार्गदर्शक वही है, राजा वही है, उसका बहुत कुछ असर होता है बच्चों के दिमाग पर। और जो असर अध्यापक का है उस असर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ये अध्यापकों की बुद्धिमत्ता के ऊपर है। बहाने से बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। एक विष्णु शर्मा से एक राजा की ये शिकायत थी कि उसके लड़के बाजिया जो उलझ हो गए और पढ़ते लिखते नहीं है और किसी काबू में नहीं आते। विष्णु शर्मा ने कहा अच्छा तो हम पढ़ा देंगे आपके बच्चों, बच्चों को बुलाया पढ़ने की कलम दी और बोले कि भाग गए और उन्हें नहीं पढ़े। अच्छा उन्होंने कहा एक और विधि आप बताते, बस बालकों को बुलाया और उसने कहानी कहना शुरू कर दिया और बहुत बहुत बढ़िया मजेदार कहानियां कही और बच्चों को बड़ा मनाया, बहुत मजा आया उन कहानियों को सुनने लगे और कहानियों को सुनते सुनते बालक इतने निष्णात हो गए राजनीति और अर्थव्यवस्था में, उसके पिता को बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत लंबी चौड़ी रकम उस विष्णु शर्मा को दी। उस विष्णु शर्मा की लिखी हुई किताबों का नाम पंचतंत्र हितोपदेश संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस तरीके से अगर चाहे अध्यापक तो उसी पढ़ाई में से जो उसको दैनिक जीवन में पढ़ानी होती है उसी से यानी कितना बड़ा काम कर सकता है, कितनी बड़ी व्यवस्था जिम्मेदारी उठा सकता है, ये होना ही चाहिए। ये अध्यापक को वेतन मिलता है और सरकारी करिकुलम पूरा करना पड़ता है और पाठ्यक्रम पास कराना पड़ता है और बच्चों को डिवीजन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है वो तो सब किया जाना चाहिए, तो इसके लिए कोई अलग से कुछ काम करना नहीं है। जब इतिहास पढ़ाया जाए तो इतिहासों के निष्कर्ष इस तरीके से पढ़ाए जाए कि उन निष्कर्षों का लाभ बच्चों को मिले और हिस्ट्री से लेकर और अनेक बातों तक भाषा में पढ़ाए जाने वाले अनेक पाठ ऐसे आते हैं इसको इस ढंग से और इस रंग दे करके उस मोड़ करके अध्यापक पढ़ाए कि उसी में एक शिक्षण की पद्धति बनी हुई पड़ी हो। फिर इसके अलावा भी थोड़ा बहुत तो समय अध्यापक अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकता है, थोड़ा वक्त दे सकता है, एक 15 मिनट आधा घंटा उनसे मिल लिया जाए और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को पूछ लिया जाए, घरेलू समस्याओं को पूछ लिया जाए, आजकल उनके दिमाग में क्या गड़बड़ चल रही है इसको समझ लिया जाए, उसके मुताबिक सलाह मशवरा दिया जाए, सफाई रखने की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, बड़ों के पैर छूने और बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा, इस तरीके से अगर चाहे तो अध्यापक बहुत आसानी से दे सकता और जरा भी इस पर दबाव नहीं पड़ सकता और इसके लिए कोई अतिरिक्त उसको भार अपने पर नहीं उठाना पड़ सकता। यदि अध्यापक चरित्रवान हो और अध्यापक रास्ते भी हों, अध्यापक देशभक्ति की ओर ध्यान देते हों और अध्यापक इस बात को समझते हों कि हमको केवल पढ़ाना पढ़ाने भर के लिए नहीं है, हम दूसरे नौकरों की तरीके से नौकर नहीं है, अध्यापक की नौकरी केवल नौकरी नहीं होती, इसलिए हम गुरु मानते हैं और उसका बड़ा बड़ा ऊंचा सम्मान था समाज में और रहना चाहिए और रहेगा। वेतन कितना मिलता है इसके ऊपर कोई दारोमदार नहीं है। चारक को कौन वेतन मिलता था, केवल फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जंगलों में रहते थे और फूस की झोंपड़ी में रहते थे, उनकी आवश्यकता कम थी, उनको जो गुजारे को मिलता था कम मिलता था। लेकिन इससे चारक की मानता पर फर्क क्या है? चारक नालंदा विश्वविद्यालय की अनेक फैकल्टियों का डीन और इस तरह का कि जिसकी शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं, बड़ा अध्ययनशील। नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा का पुस्तकालय, स्कूल उसी की थी। इससे गरीब रहने से और कम खर्च मिलने से हमको कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए, ये क्या बात। कर्तव्य को पूरा करना अलग बात है, वो हमारी अध्यात्म, नैतिक, राष्ट्रीय और नागरिक जिम्मेदारी है। वेतन हमको कम मिलता है तो ये सरकार से कहना चाहिए, लड़ना झड़ना चाहिए या कमाई के लिए दूसरी स्रोत ढूंढनी चाहिए या जो भी करना चाहिए। क्योंकि हमको कम वेतन मिलता है, ज्यादा वेतन मिलता है, इस खर्च से हम ज्यादा पढ़ाएं या कम पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को कम करें या ज्यादा करें, ये तो खराब बात। कम वेतन मिलता है तो कम वेतन के लिए दूसरे तरीके पर करनी चाहिए, थोड़ा उसको छोड़ देना चाहिए, उस काम को दूसरा ज्यादा फायदे का काम करना चाहिए। लेकिन हम उसको काम को छोड़े भी नहीं और ठीक तरीके से करें भी नहीं, ये तो देश के साथ में विश्वासघात हो गया और अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात हो गया और बच्चों के साथ विश्वासघात हो गया, अध्यापक के लिए शोभा नहीं देता। और ये दलील उसकी बिल्कुल नाकारा है कि हमको कम वेतन मिलता है इसलिए हम बच्चों के शिक्षण में ध्यान नहीं देते। तो फिर आपने क्यों की थी नौकरी, पहले देख लेते कम वेतन का है, हम दूसरा काम करेंगे। जब आपने जिम्मेदारी उठाई है, कसम खाई है और शपथ ली है और आपने जिम्मेदारी बहल की है, फिर आप गड़बड़ क्यों फैलाते हैं। गड़बड़ नहीं फैलाई जानी चाहिए, किसी वर्ग को नहीं फैलानी चाहिए, खासतौर से अध्यापकों को, क्योंकि माँ बाप के बाद तीसरा नंबर अध्यापक का। अध्यापक राष्ट्र के निर्माण करने में कितना योगदान दे सकते हैं, इसका अगर किसी को इतिहास जानना हो तो भारतवर्ष के इतिहास को देख करके ले। पहले प्राचीन काल के संत और ब्राह्मण अध्यापन का काम करते थे, उनके गाँव गाँव में स्कूल थे, पाठशालाएं थी, दान दक्षिणा तो मिलती थी, दान दक्षिणा से अपना गुजारा कर लेते थे और उससे केवल अध्यापन काम करते थे। और हर ब्राह्मण अध्यापक होता था और हर संत अध्यापक होता था। बच्चों की शिक्षा का की समस्या जहाँ तक थी देहातों में रह करके, उस काम को ब्राह्मण लोग करते थे। और जो जहाँ तक मनुष्य की आत्मिक और आंतरिक और दूसरी समस्याएं, गहरी समस्याएं थी, और जो बड़ी उम्र के लोगों के पास आते हैं उनको, उनका शिक्षण करने का काम संत महात्मा और साधुओं का था। वो मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करते थे। और छोटी शिक्षाएं, छोटी जीवन की शिक्षाओं की व्यवस्था बनाने के लिए ब्राह्मण काम करते थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण और साधु का बहुत सम्मान था, उनको गुरु भी कहते थे, उनको पांव छूते थे और उनका बहुत ही आदर करते थे। गरीब होते थे तो क्या, और वो गरीब होने का होने पर भी उनका गौरव बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता रहा। इसका कारण ही था कि उनकी जिम्मेदारी समाज के अन्य सारे के सारे वर्गों की अपेक्षा ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अध्यापक को अभी मैंने कहा ना, माता पिता के बाद दूसरा नंबर आता है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि माता पिता से भी ज्यादा और पहला नंबर आता है। माता पिता से पहला नंबर है अध्यापक का, क्योंकि माता पिता के पास जो ज्ञान नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, जो योग्यता नहीं है, पढ़ाने का ढंग नहीं है, विचारों को मालूम और मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है, और शिशु का विकास कैसे होता है इसको समझ नहीं पाते हैं, वो सारी की सारी योग्यताएं अध्यापक के पास हैं। अध्यापक चाहें तो थोड़े समय में ही 4-5 घंटे अपने पास रख करके भी यानी क्या से क्या सिखा सकता है, बालकों को क्या से क्या बना सकता है। जिस अध्यापक के बच्चे अच्छे नहीं कर सके, कोग निकले, कुपात निकले, बुरे काम करने वाले निकले, उच्छंकल निकले, उसके बारे में दोष किसी को भी दिया जाए तो अध्यापक उसे बच नहीं सकता। कि उसने अपने बालकों के ऊपर नैतिक प्रभाव डालने की कोशिश नहीं, और उसने जो शिक्षण दिया उसके भीतर से भावनाओं को भड़काने वाले और मनुष्य के अंतरंग को स्पर्श करने वाले शिक्षण उसके पास थे नहीं। अगर उसके पास रहे होते तो जरूर उसने बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को स्पर्श किया होता और उनके अंदर भावनाओं को मोड़ देने में सफल हो गया होता। आदमी के किसी बच्चे के लिए ना आए और एक साल फेल हो जाए तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, बनता बिगड़ता इससे है कि उससे व्यक्तित्व सही रूप से बन न पाए। इसलिए हमारे अध्यापकों में से हर अध्यापक का ये बहुत ही पुण्य और पवित्र और एक महान कर्तव्य है कि जिसने वो काम उठाया है और अपने कंधे पर लिया है तो उस काम में भूल चूक नहीं करनी चाहिए। सरकारी करिकुलम में भले से ये बातें न हो और सरकारी पाठ्यक्रमों में ये बात भले से जुड़ी हुई न हो कि बच्चे को सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त उसका नैतिक, बौद्धिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरणा किस तरीके से समाप्त किया है भविष्य न हो, अध्यापक अपने आप कर सकते हैं। यो सरकार का भी काम है जो आजकल की भार स्वरूप और बेकार पैदा करने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली और उच्छृंखलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली की जो प्रक्रिया है उसको जड़ जड़ से मूल तक बदल दे। जिन राष्ट्रों ने अपने समाज को और अपनी भावी पीढ़ियों को बनाने के लिए प्रयत्न किया है उन्होंने पहला ध्यान शिक्षा के ऊपर दिया है। जर्मन का उदाहरण, जर्मन के हिटलर के दिमाग में एक बात थी, अपने जर्मन नागरिकों को ऐसा हिम्मत वाला, ऐसा बहादुर, ऐसा महत्वाकांक्षी बना दिया जाए कि सारी दुनिया के ऊपर जर्मन जाति हावी हो जाए और सारी दुनिया पर उसका आधिपत्य हो जाए और चक्रवर्ती शासन हो जाए। इस तरह की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने एक ही तरीका अख्तियार किया कि अपने देश का शिक्षण आमूल चूल बदल दिया। जो कुछ भी पाठ पढ़ाए जाते रहे और जो कुछ भी शिक्षण दिया जाता रहा इसमें पूरा पूरा पुट इस बात का लगाया जाता रहा कि पहली किताब पढ़ने से लेकर के और एमए पास होने तक हर पाठ और हर इतिहास और हर बात को इस तरीके से बालकों को सिखाया जाता रहे कि बच्चे के मन में महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाए, उसके मन में शौर्य पराक्रम की भावना उत्पन्न हो जाए, उनको बढ़कर के काम करने की का मादा उत्पन्न हो जाए और उसको नेतृत्व करने का और लड़ाई के मैदान में खड़ा होने का की हिम्मत पैदा हो जाए और जर्मन जाति का गौरव सारे विश्व पर छा देने की ललक पैदा हो जाए। इसी तरह के तेजस्वी ओजस्वी अध्यापक उसने की नियुक्त और ऐसी सारी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब हिटलर का शासन प्रारंभ हुआ उसके थोड़े ही दिनों बाद लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस तरह के सुयोग्य नागरिक और इस तरह के सुयोग्य व्यक्ति आ गए जिनका खून उबल रहा था और जो ये कह रहे थे कि हम दुनिया पर छाएंगे और हम सारी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। बाकी किसी कौम और किसी देश में वो शौर्य नहीं है और महत्वाकांक्षा नहीं जो हमारे अंदर है। ये सारी की सारी मनोभावनाओं का विकास करना इसलिए संभव हुआ कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली आज से अंत तक उसी ढांचे में डाली गई थी। पिछले दिनों कई देशों ने ऐसा किया है, जापान की देशभक्ति प्रख्यात और वहाँ का नागरिक अपने देश के लिए निजानी क्या से क्या करने को तैयार है। जिन जमाने में बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार था जापान में और बौद्ध धर्म के प्रति बहुत निष्ठा थी, तब एक बाहर के आने वाले व्यक्ति ने बौद्ध बालक से ये पूछा कि अगर तुम्हारे देश के ऊपर हमला करें बुद्ध भगवान और हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को लेकर के अगर चढ़ाई करें जापान के ऊपर तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हम बौद्ध धर्म की सिद्धांतों को मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानते रहेंगे, लेकिन बुद्ध जो उसके संस्थापक है अगर हमारे देश के ऊपर हमला करेंगे तो हम उनका सिर काट देंगे और जो भी लोग आएंगे उनको हम तहस नहस कर देंगे। धर्म की अपेक्षा और मजहब की अपेक्षा उन्होंने इस बात को आवश्यक समझा कि देश के प्रति निष्ठावान हुआ जाए, अपने वर्ग के लिए प्रति निष्ठावान हुआ जाए, अपनी कौम के प्रति निष्ठावान हुआ जाए। ये निष्ठावान होना कहीं जमीन आसमान पर से नहीं आता, कोई अनायास को पेट में से सीख के नहीं आता। बुद्धि और भावनाएं एकाएक बन नहीं जाती, इसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है और खासतौर से शिक्षा का वातावरण ठीक तरीके से बना दिया जाए तो व्यक्ति चरित्रवान बन सकते हैं। इंग्लैंड और दूसरे देशों की नैतिकता और नागरिकता के बारे में सारी दुनिया में सराहना की जाती है। वहाँ आदमी आमतौर से बेईमान नहीं होते, मूल्य ज्यादा रखे बात ठीक है लेकिन आदमी अपनी इज्जत का सवाल ये कहता है। शराब खाने में भी देखा है कि शराबी लोग गए और शराब पी करके बेहोश हो गए। उसकी जेब में 2000 रुपए के थे नोट, तब ताली खाने के मालिक ने उस पैसे को गिना और संभाल के रखा और संभाल के रखने के बाद में जितने पैसे की शराब पी थी ठीक बिल्कुल नए कानी कौड़ी का फर्क उतना ही बिल उसकी जेब में डाल दिया और बाकी पैसा जेब में से काट करके बाकी पैसों समेत टैक्सी मंगाई और टैक्सी किराया करके उसका सारा हिसाब और सब भेज दिया। क्या मजा एक कानी कौड़ी का फर्क पड़े। इस तरह की नैतिकता की शिक्षा जिन देशों में होती है वास्तव में वही देश इस लायक होते हैं अपने भीतर की अंतरंग व्यवस्था को कायम रख सकें और दूसरे देशों को भी मार्गदर्शन कर सकें। इंग्लैंड अपने देश की दृष्टि से अभी भी इस गए गुजरे जमाने में दुनिया का बेहतरीन देश है और सभ्य देश है और उसने हमारे देश के ऊपर कितने वर्षों से हुकूमत की, हुकूमत किस तरह से की और कैसे की ये मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इतने दूर रहने वाले और जरा से आदमी सात समुद्र पार करके क्या करके इतने बड़े देश के ऊपर हुकूमत करें, क्या उनके अंदर ये गुणों की विशेषताएं नहीं है? क्या हम अपने देश की हिफाजत नहीं कर सके, अपनी आजादी को रक्षा नहीं कर सके? वो सात समुद्र पार से करा करके आए, अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करता, मैं तो एक इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि अगर मनुष्यों के गुणों को विकास करने का और मनुष्य की चरित्र को विकास करने का क्रम बनाया जा सकता हो तो छोटे छोटे व्यक्ति, घरों में रहने वाले व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी इतने महान और श्रेष्ठ बन सकते हैं कि क्या कहना। ये सारी की सारी व्यवस्था को बनाना हमारी शिक्षा प्रणाली का काम है और ये सरकार का काम है और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि कूड़ा कबाड़े की तरीके से हमारे बालकों का दिमाग खराब करने वाली, वक्त खराब करने वाली, पैसा खराब करने वाली, उसके भविष्य को अंधकार में धकेल देने वाली और उनको बेकार के आदमी बना देने वाली जो शिक्षा प्रणाली और प्रक्रिया है, उसको जमीन से आसमान, उसको गर्स से मूल तक काट के फेंक दिया जाए। और बिल्कुल ही जिस तरीके से शासन बदल जाते हैं, गवर्नमेंट जब बदल जाती है, उस तरीके से ये कूड़ा कबाड़ जैसे शिक्षा को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि आदमी बिना पढ़े रहे, बिना पढ़े आदमी आज से 100 वर्ष पहले थे, लेकिन उनको अपने चरित्र का ज्ञान था, अपने कर्तव्यों का ज्ञान था, अपने परिवार का ज्ञान था। आज का पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ नौकरी करना जानता है, पैसे कमाने जानता है, अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्यों की भूल, बच्चों के प्रति भूल, समाज के प्रति भूल और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति भूल, भूलता ही भूलता चला जाता है। और यह सब मालूम होता है कि नवालिम शिक्षा में है दोष या वातावरण में दोष है, किसमें है दोष, लेकिन दोष कोई जरूर ऐसा है कि अभी भी बिना पढ़े की तुलना में पढ़े को तोड़ा जाए तो वो ज्यादा अनैतिक पाया जाएगा और गलत आदमी पाया जाएगा और देश के लिए हानिकारक पाया जाएगा। अपनी रोटी कमाने से क्या बना, अपनी रोटी तो कोई भी कमा सकता है, अपनी रोटी तो भेड़िया भी कमा लेता है, अपनी रोटी तो कुत्ता भी कमा लेता है, अपनी रोटी तो चूहा भी कमा लेता है। अपनी रोटी को ज्यादा कमा ले और ज्यादा पैसे खा ले और ज्यादा खुराक इकट्ठी कर ले और ज्यादा मौज मजा से रह ले, ये क्या जीवन का लाभ हुआ और क्या समाज के लिए इसका अनुदान मिला? एक आदमी की बढ़ोतरी कुछ मतलब नहीं पाता, राय बराबर भी उससे फायदा नहीं होता। ऐसे आदमी जो कि सारा समाज गरीब हो, एक आदमी बेहतरीन रोटियां खाए, वो तो धिक्कार और शर्म की बात है, उसको जाहिल और जलील करना चाहिए। कि जो आदमी सारा देश गरीब रहता है, बैठकर किस तरीके से खाता है, कमीना आदमी इसको न कहा जाए, क्या कहा जाए? ये कमीने आदमी मालदार भी हो तो क्या, अमीर भी हो जाए तो क्या? अमीर और मालदार और ज्यादा खाने वाले और ज्यादा पहनने वाले लोग अगर देश में पैदा किए जाएं तो उससे देश का कुछ बदल नहीं हो सकता, बल्कि सही बात यह है कि और भी बर्बादी होगी, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, डाह उत्पन्न होगा, उसकी देखा देगी दूसरे लोग ऐसी गलत कदम उठाएंगे। ये शिक्षा आज की हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए सरकार पर जोर डाला जाना चाहिए कि उसको इस तरीके से बदल दिया जाए जिससे अपनी पीढ़ियों में वो महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो, अमीर बनने की नहीं, खुशहाल बनने की नहीं, अय्याश बनने की नहीं, मालदार बनने की नहीं और मौज मजा उड़ाने वाले की नहीं, बल्कि उनके मन में दूसरी तमन्ना, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जो कि व्यक्ति की महानता को विकसित करती है और समाज को श्रेष्ठ बनाती है और राष्ट्र की जड़ों को मजबूत करती है। ऐसी शिक्षा की जड़ें, ऐसी व्यक्तित्व को विकास करने की जड़ें हमारी शिक्षा में ही सन्निहित है और वो शिक्षा का विकास करना हम ऐसे हर आदमी का काम है। और गलत शिक्षा चल रही है तो उसको रोकना, उसको रोकने के लिए, परिवर्तन करने के लिए सरकार को मजबूर करना हमारा आपका सबका काम है और वो किया जाना चाहिए। सरकार में अगर कोई विचारशील लोग हों, मैं नहीं जानता उनमें से कैसे कैसे लोग रहते हैं, लेकिन अगर उसमें से विचारशील लोग हों तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने शिक्षा का परिवर्तन न किया तो सारा राष्ट्र तहस नहस हो जाएगा, चाहे वो नहर बना लें चाहे वो बांध। शिक्षा के भीतर नैतिकता का समावेश आवश्यक है और कैसे किया जाना चाहिए इसलिए विचार करना विशेषज्ञों का काम। अब इसके बाद में तीसरा एक और वर्ग रह जाता है, इसको स्वयं अध्यापक, इसको विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी अगर ठीक तरीके से अपने आप को अनुशासन में रहना नहीं सीखे, इस बात को भूल जाए कि हमारे जीवन के प्राथमिक वर्ष हमारे भावी जीवन की नींव है और नींव अगर कमजोर पड़ी रही तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती और इमारत खराब हो जाएगी, इमारत टूट फूट जाएगी, इमारत तहस नहस हो जाएगी। अगर हमारे भावी जीवन की अगर इमारत जो हमने सुंदर सपने के रूप में संजो करके रखी है, अगर उसकी जड़ छोटी उम्र पर विद्यार्थी जीवन में ठीक तरीके संभाल के नहीं रखी गई तो हमारी बेहतरीन इमारत नहीं बन सकती और हम खराब जिंदगी जिएंगे। इसीलिए प्राथमिक जीवन, इसको हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं, एक संयम का जीवन है, तपश्चर्या का जीवन है, योग साधना का जीवन है, उसको योग साधना के रूप में ही दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को संयम ही रहना चाहिए, शौक मौज करने के लिए तो कितनी बड़ी जिंदगी पड़ी और कोमल उम्र जब है इस पर जल्दी जल्दी प्रभाव पड़ जाते हैं उस समय सिनेमा जैसे बाइगा शौक, इसमें कि अपने देश में सिवाय किसी का नैतिक चरित्र खराब करने के और कोई उद्देश्य इनका नहीं है। ये फिल्म बड़ी उपयोगी थी, जर्मन और दूसरे देशों ने अपनी जनता के नागरिकों को वैज्ञानिक जानकारियां, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, ऐतिहासिक जानकारियां, विश्व की अनेक समस्याओं के बारे जानकारियों के लिए बारे में फिल्म उद्योग का उपयोग किया था और उसको राष्ट्र को शिक्षित किया था। पर इस अभागे देश में तस्वीर चौपट ही चौपट हो रहा है। सरना को खुली छूट इस बात की दी गई है कि लोगों के अंदर कामुकता भड़काएं और अनैतिकता पैदा करें और आदमी को बुरा आदमी बनाएं। ये तो शिक्षण होता है सिनेमा के अंदर। इस तरह के बच्चों का और विद्यार्थियों का काम है कि जो इस तरह के बाजार किस्म के फिल्मों से सिनेमाघर भरे पड़े हैं उनसे आप अपने आप को बचा करके रखें और उन बुरी आदतों को जो उन सिनेमा के पात्रों में देखी जाती है और सिनेमा की तस्वीरों में दिखाई जाती है उनसे अपने आप को बचाव करें। ये अपना काम है, विद्यार्थियों का काम है कि अपने समय को संभाल करके रखें। जीवन की नींदों तो रखी जाती है, अगर उन्होंने संयम से काम नहीं लिया, ब्रह्मचर्य से काम नहीं लिया और अपने आप को भड़काने वाली परिस्थितियों में रखा, कामुकता की परिस्थितियों में रखा, तो जरूर उनको ऐसी बुरी आदतें सीखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो कि उनके शरीर को खोखला करके रखे। आज हम देखते हैं कि हमारे नवयुवकों के चेहरे पर न तेज है न ओझ, न उनकी आंखों में उम्मीदें हैं और न उनका साहस। सारे के सारे ऐसा मालूम पड़ता है कि जवानी में कोई आदमी बिलासी जैसे होते हैं, काम जैसे होते हैं, बड़ुए जैसे होते हैं, बूढ़े जैसे होते हैं, इस तरह का नवयुवक टूटा हुआ, गिरा हुआ, मरा हुआ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं, पर एक बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मचर्य की जड़ें भीतर ही भीतर खोखली होती चली जाती हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, वो छुपी हुई बात है, गुपचुप की बात है। लेकिन गुपचुप की बात के ऊपर जब पर्दा उठा करके हमको देखते हैं तो उस नाली के भीतर बड़ी सड़न आती है। परस्पर नैतिक और अनैतिक जो उपयोग किया की जाती है उनका जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि अवांछनीयता जो विद्यार्थियों में पैदा होती है कामता से संबंधित और गंदी किताबें पढ़ करके और गंदी तस्वीरें देख करके और गंदी फिल्म देख करके और गंदे लड़कों की सोबत में रह करके जो बुरी आदतें वो सीख लेते हैं, उससे उनका शरीर खोखला उस समय ही नहीं हो जाता, एक सारी जिंदगी और तबाह हो जाती है। बुढ़ापे का वक्त आता है, जवानी का वक्त आता है, वो किसी काम के लिए आती है। बच्चे पैदा करते हैं बिल्कुल सड़े गले बच्चे पैदा करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने से पहले हजार बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, आंखें कमजोर, कमर में दर्द, मरे दिखता नहीं, कान सुनाई नहीं पड़ते, सिर भन्नाता नहीं, जाने क्या क्या दुनिया भर की बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं। और ये बीमारियां किसी ने थोपी नहीं है और ये दवाओं से नहीं जा सकती। जो जीवन का मूलभूत था ओजस और जो जीवन को लंबा बना सकता था, मजबूत बना सकता था, वो सारे का सारा सार उस छोटी और कच्ची उम्र में जब किसको छुआ भी नहीं जाना चाहिए था, जब किसको पकड़े जाना चाहिए था, वो हमारा पका हुआ जीवन तत्व आगे जीवन की नींव को मजबूत कर सकता था, लेकिन बालकपन में ही ऐसे बिगाड़ शुरू हो गया। प्रत्येक बच्चे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने शरीर की रक्षा कैसे की करनी चाहिए, बुरी आदतों से कैसे बचना चाहिए। सारे का सारा समय और मनोयोग हमको अध्ययन में लगाना चाहिए, पढ़ने में लगाना चाहिए। खेलकूद हम खेलें बेशक स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन ऐसे खेलकूद नहीं होने चाहिए जो समय की बर्बादी करते हैं, जैसे ताश खेलना, शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना, इससे क्या मिलता है, इसमें कौन लाभ होता है। गेंद खेली जाए समझ में आता है, क्रिकेट खेली जाए, फुटबॉल खेली जाए समझ में आता है, उससे व्यायाम हो जाता है। खेलकूदों के लिए समय निकाला जाए, मनोरंजन भी हो सकता है और साहस और शौर्य की शिक्षण भी मिल सकता है। पर इस तरह के बाह्यात खेल जो ज्वारी की तरीके से और जो केवल मनोरंजन के लिए किए जाते हैं उससे क्या फायदा। इसी तरीके से जो आजकल रेडियो और ट्रांजिस्टर इतने सस्ते और सुलभ हो गए हैं जो बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं, और इसमें से भी हम देखते हैं कि इसमें लोकरंजन का ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सीरियल रेडियो किसी ने सुना है उसको बहुत नाउम्मीद हो, और रेडियो के दूसरे गाने जिसमें से 75% होते हैं अगर सुने जाए तो आदमी को नाउम्मीदी होती है और ये मालूम पड़ता है कि ये किसी व्यक्ति के निर्माण करने के लिए और समाज के निर्माण करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यूँ आंसू पहुंचने के लिए सारे दिन में दो चार अच्छे गीत और दो चार अच्छे भाषण भी आ जाते हैं जिससे कि वो अपने चेहरे के नकाब को अच्छा बनाए रह सकते हैं। बाकी ये मालूम पड़ता है ये भी खोखला करने की बातें हैं, बाली बातें हैं, और मनोरंजन का ये भोड़ा तरीका है। उस भोड़े तरीके से यदि नवयुवक अपने आप को बचा करके रखें, व्यायाम किया करें, ब्रह्मचर्य से रहा करें, स्वाध्याय किया करें, ईश्वर भक्ति के बात ध्यान रखें और अनुशासन से, जो 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 व्यक्ति अनुशासन छोटी उम्र में नहीं सीख सका, अनुशासन का पालन नहीं किया, वो कभी किसी आदमी को अनुशासन में नहीं रख सकता, अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। जो अच्छा शिष्य नहीं रहा है और जो बुरा शिष्य रहा है और अपने अध्यापकों से लड़ता झगड़ता रहा है और अपने अध्यापकों की अवज्ञा करता रहा है, कभी भी उसको भावी जीवन में ये मौका नहीं मिल सकता कि अगर उसको अध्यापक बनने के लिए मौका दिया जाए, अध्यापक बने तो उसके बच्चे क्या ना माने। जो जो बुरा लड़का रहा है वो अपना बाप होकर के अच्छा बाप नहीं बन सकता और उसके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। ये अनुशासन छोटी उम्र में सीखना पड़ता है। वो आदमी जिसने छोटी उम्र में अपने बड़ों का आज्ञा पालन नहीं किया, अनुशासन नहीं किया और मिलिट्री डिसिप्लिन अपने जीवन में स्थापित नहीं किया, वो कभी भी आगे जाकर के अनुशासन में दूसरों को रख करने में समर्थ नहीं हो सकता। उस आदमी को अगर फौज का कर्नल बना दिया जाए, कप्तान बना दिया जाए, तो कभी अपनी सेना को अनुशासन में नहीं रखता, इसलिए कि स्वयं अनुशासन पालन करना सीखा नहीं। जो गुण अपने आप में है सिर्फ उन्हीं गुणों को दूसरों को आदमी सिखा सकता है। इसलिए जिन लोगों के हाथ में है आगे बड़े बड़े काम करने और दूसरों से काम ले लेना है, मान लीजिए आपको बड़ा अफसर बनना है और आगे अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट से काम लेना है, उनको आज्ञा पालन करने वाला बनाना है, तो इससे पहले आपको स्वयं आज्ञा पालन करने वाला बनना होगा, अनुशासन प्रिय बनना होगा और कायदे कानून के भीतर रहने वाला बनना होगा और मर्यादाओं में रहने वाला बनना होगा। आज बच्चों को इस तरह का शिक्षण और इस तरह की हवा नहीं दी जाती, बल्कि उनको उच्छृंखलता की बात सिखाई जाती है। परीक्षा के लिए जाने के लिए जाते हैं, चाकू लेकर जाते हैं, नकल करने के लिए ले जाते हैं और जहाँ उसके पर्चे जा पहुंचे हैं अध्यापकों के पास चक्कर लगाते हैं, जो जो नंबर देते हैं उनको चाकू दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं। ये क्या बात है? इस तरीके से प्रचार से पास भी हो जाए आदमी तो उसके अंदर वो विशेषताएं कहाँ से आएंगी जो कि जीवन के विकास करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर कोई पास भी कर ले, चलिए इस तरीके से गलत तरीके से, और डिवीजन भी ले आए तो पास होने और डिवीजन होने के बाद में अधिक से अधिक यही तो हो सकता है कि नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी में सफलता और नौकरी में एफिशिएंसी और व्यक्तित्व का विकास और तरक्की करने का मादा और सफल नौकरी कैसे कर लेगा वो आदमी जिसने कि परिपूर्ण रूप से और गहराई से और गंभीरता से शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। गंभीरता से शिक्षण इनके पास होता है, उनके पास योग्यता होती है और योग्यता ही हमेशा काउंट करती है, और योग्यता ही जिसके पास होती है वो आगे विकास कर सकता है। योग्यता जिसके पास नहीं है और उल्टा पुल्टा सर्टिफिकेट छीन लाए, धमका लाए, नकली सर्टिफिकेट ले आए, जाली सर्टिफिकेट ले आए, मास्टरों को धमका लिया, ये कर लिया और यहाँ से पढ़ लिया, किताब में से एक पन्ना यहाँ से पढ़ लिया और गेस्ट पेपर खरीद करके ले आए, उसमें से थोड़े से सवाल यहाँ से सीख लिए, थोड़े से वहाँ से सवाल सीख लिए, और जब काम पड़ेगा तब जब किसी ऑफिस का इंचार्ज बनना पड़ेगा और जब कोई बड़ा काम हाथ में आएगा और जब जब कोई अच्छे अनुवाद करने पड़ेंगे, अच्छे ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे और तब सारी पुल खुल जाएगी तब फिर पेड़े हुए इधर से उधर ही करते फिरेंगे बिना योग्यता के आदमी के लिए क्या होने वाला है? कुछ भी तो होने वाला नहीं है, उन्नति का द्वार कैसे खुलने वाला है? इसीलिए विद्या इसलिए नहीं कि हम पास हो जाए या डिवीजन ले आए, हम खेल कूद का वक्त लगा लें, बल्कि हमको विद्या इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारी योग्यताओं की वृद्धि हो, हमारे स्वभाव की वृद्धि हो। इस समय में केवल अनुशासन ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। राजनीति में काम करने का बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है, सिनेमा देखने के लिए सारी जिंदगी लंबी भरी हुई पड़ी है, दूसरे शौक मौज करने के लिए क्या यही वक्त रह गया है क्या? नींव डालने का ये वक्त है और जीवन की फाउंडेशन मजबूत करने का वक्त है विद्यार्थी जीवन, और विद्यार्थी जीवन को अच्छे से अच्छा बनाया जाना चाहिए। शिक्षा तीन अंगों में बटी हुई है, अभिभावक जिसका काम है कि ऐसे वातावरण उत्पन्न करें इसमें कि बालकों का ठीक तरीके से विकास हो, अध्यापक अपने शिक्षण के साथ साथ में स्कूली पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ में बालकों को वो बात भी सिखा बताएं उनके जीवन के विकास करने में, उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। ये कार्य वो सरकारी पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए अपनी तरफ से भी जोड़ कर सिखा सकते हैं और सिखाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों का नंबर आता है, वो स्वयं भी उसको सीखने के लिए इच्छुक न हो और सीखना नहीं चाहें और अध्यापकों और अभिभावकों के कार्य में सहयोग नहीं करें और उच्छृंखलता ही बरतें और मनमानी बरतें और किसी की सुने ही नहीं और मनमर्जी का व्यवहार करें, तो फिर बेचारे अध्यापक भी क्या कर सकते हैं? ये तीनों वर्गों में बटा हुआ है। व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा की व्यवस्था, भावी जीवन का उन्नयन और अपने समाज का दृढ़ होने का स्वरूप, इस सब के बारे में हम सबको ध्यान देना चाहिए और समग्र शिक्षा का विकास करने के लिए तीनों वर्गों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए ताकि हमारा देश समर्थ और समृद्ध बन सके। समाप्त। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।